हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। तभी तारा चौंकते हुए बोले थे, लेकिन अमित सर, आपको इस बात के बारे में कैसे पता चला कि उस अक्षत खुराना ने शहर के बाहर की जमीन पर स्टे ऑर्डर ले लिया है? अब अमन काफी ज्यादा चौंक गया था। उसने सपने में नहीं सोचा था कि तारा उसकी इतनी सी बात पकड़ लेगी। तभी अमित हल्का सा हकलाते हुए बोला था, वो तारा जी, शायद आपको नहीं पता, मैं हमेशा से ही अमन के सारे नए पुराने प्रोजेक्ट में ही हैंडल किया करता हूँ, और मेरे आदमियों ने मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन पर ही दी थी, तो बस इसीलिए मैं सीधा माँ के पास आ गया। जैसे ही अमित ने सफाई दी, तारा उसे देखकर रह गई थी। वहीं अमन जल्दी से बोला था, रे मेरे दोस्त, तुझे सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, अगर इस दुनिया में मेरा कोई वैल्यूएशन है तो सिर्फ और सिर्फ तू ही है। और तारा की ओर देखकर कहने लगा था, तारा, तुम्हें कभी भी अमित पर शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम नहीं जानती, हम बचपन से ही एक दूसरे के साथ हैं, और अमित ने हमेशा मेरे हर सुख दुख में मेरा साथ दिया है। अमन की बात सुनकर तारा उसे केवल घूर कर रह गई थी। वो उसे ये नहीं बता सकती थी कि इसने हमेशा तेरे सुख दुख में साथ नहीं दिया है, बल्कि जितने भी दुख तुम्हारी ज़िंदगी में आए हैं, वो सभी सिर्फ और सिर्फ अमित ने ही तुम्हें दिए हैं। वेल, तब अमन ने अमित से कहा था, अभी एक काम करो, इस बात के बारे में पता चलाओ कि ऑफिसर्स के साथ मिलकर उसने मेरे शहर के बाहर वाले प्रोजेक्ट पर स्टे ऑर्डर लिया है, फटाफट उसके बारे में पता करके मुझे बताओ और सारी इन्फॉर्मेशन दो। तभी अमित मुस्कुराते हुए कहने लगा था, मुझे पता था कि जब तुझे ये पता चलेगा कि किसी ने हमारी नई कंपनी पर स्टे लगा दिया है, तो तुम सबसे पहले उन ऑफिसर्स के बारे में ही जानना चाहोगे, तो इसीलिए मैं पहले ही तुम्हारे लिए सारे ऑफिसर्स की लिस्ट ले आया हूँ जो इस फाइल के अंदर है, तुम उनको अच्छी तरह से देख लो। इतना ही नहीं, मैं इन ऑफिसर्स के साथ आज रात 9 बजे की अपॉइंटमेंट ले ली है। क्या? या। जैसे ही अमन ने ये सुना, वो हैरान हो गया था और कहने लगा था, आज रात 9 बजे की? मतलब तुम्हें आज रात 9 बजे की अपॉइंटमेंट लेने की क्या ज़रूरत थी, और रात में भला कौन ऑफिसर्स मिलते हैं? तभी अमित अमन की ओर देखकर कहने लगा था, अब भाई मैं तुझे खुलकर कैसे समझाऊं, अभी लेडीज़ यहाँ कमरे में मौजूद हैं, तारा जी यहाँ कमरे में हैं, भला मैं तुझे उसके सामने कैसे बता सकता हूँ? तब तारा परी अमित का इशारा समझ चुकी थी कि वो कुछ बात उसके सामने नहीं करना चाहता है। तारा वहाँ से जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फ़िलहाल वो वहाँ एक इंसान थी, और एक इंसान एक ऐसी सिचुएशन में खड़े रहना ठीक नहीं था। इसीलिए तारा जल्दी ही अमन की ओर देखते हुए वहाँ से बाहर निकल गई थी। जैसे ही वो बाहर निकली, वो किसी से टकरा गई थी। उसके सामने कोई और नहीं बल्कि मलिका ही थी। मलिका को देखकर तारा को और गुस्सा आ गया था, क्योंकि तारा अच्छी तरह से जानती थी कि मलिका कौन थी। जैसे ही मलिका ने तारा को देखा, उसने तुरंत उसे गुड मॉर्निंग विश किया था और उसका हाथ पकड़कर कहने लगी थी, माफ़ कीजिएगा तारा मैडम, मैंने आपको देखा नहीं, और मैं जानती हूँ कि पिछले एक बार मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, तो आप मुझे उसके लिए माफ़ कर देंगी, और मुझे लगता है कि हम अपनी दोस्ती की एक शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, हालांकि मैं जानती हूँ आप मलिका हैं और मैं नौकर हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक अच्छे बॉस के साथ साथ एक दोस्त की भी उम्मीद करती हूँ। जैसे ही मलिका ने इस तरह की चिकनी चुपड़ी बातें की, तारा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई थी और सोचने लगी थी, आखिरकार इन दोनों को हुआ क्या है, ये दोनों आखिरकार करना क्या चाहते हैं। तभी तारा ने सोचा कि अगर वो इस मलिका से दोस्ती कर लेती है, तो उसके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं, और कब क्या अमन के खिलाफ प्लान बनाने वाली है, तो उसके बारे में से पता चलता रहेगा। तो तारा ने भी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मलिका से कहा था, तुम फिक्र मत करो, हमारी कोई दुश्मनी पहले भी नहीं थी, या डोंट वरी, ये सब तो चलता रहता है, आज से हम दोनों दोस्त हैं, डोंट वरी, अगर कोई भी परेशानी होगी तो तुम मुझे ज़रूर बताना, मैं पूरी कोशिश करूंगी, मैं तुम्हारी हर परेशानी दूर कर सकूं। जैसे ही तारा परी ने ये कहा, मलिका उसे घूर कर देखने लगी थी। उसने तो सोचा था कि तारा के अंदर इतना सारा एटीट्यूड है, न जाने उसे दोस्त बनाने के लिए उसे कितने सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, लेकिन ये क्या, तारा तो एक छोटी सी मुलाकात में ही, छोटी सी कॉन्वर्सेशन में ही उससे कन्विंस हो गई थी, और उसने उससे दोस्ती के लिए हाँ भी कह दिया था। तो मलिका ये सोचकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी और सोचने लगी थी, आज जब काली शक्तियों के मालिक अमित को इस बात के बारे में पता चलेगा कि तारा से मैंने इतनी जल्दी और इतनी आसानी से दोस्ती कर ली है, तो वो तो और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे, हो सकता है कि इसी खुशी में वो मुझे कुछ और नई शक्तियाँ दे दे, तो ये सोचते हुए मलिका चलने लगी थी। तभी अचानक जैसे ही तारा अपने केबिन की ओर जाने लगी, मलिका ने उसे पीछे से रोक लिया था और कहने लगी थी, अच्छा तारा मैडम, अगर हम दोस्त बन ही गए हैं, तो मैं, जैसे कि आपको पता है कि मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ, और मैं आपसे इसी के नाते कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि विक्रांत सर कहाँ गए। जैसे ही मलिका ने विक्रांत का नाम लिया, तारा के पैर जाते जाते अचानक वहीं जम गए थे, और उसे सब कुछ वो याद आ गया था जो कुछ जंगल में हुआ था उसके साथ, और विक्रांत उसके साथ क्या करने के जा रहा था।
तभी तारा हल्का सा रुककर खुद को संभालती हुई उसकी ओर देखकर कहने लगी थी, विक्रांत सर वापस चले गए हैं जहां से वो आए थे, तो मुझे नहीं लगता आज के बाद इस ऑफिस में किसी को भी विक्रांत सरकर के बारे में किसी तरह का कोई डिस्कशन करना चाहिए। जैसे ही तारा ने ये कहा, मल्लिका हैरान हो गई थी और तब वो जल्दी से बोली थी, मेरा पूछने का मतलब ये नहीं था, मैं तो केवल यही जानना चाहती थी कि विक्रांत सर क्या वापस विदेश चले गए हैं। तभी तारा ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी थी और सीधा अपने केबिन में चली गई थी, क्योंकि विक्रांत के बारे में वो किसी तरह की कोई और बात नहीं करना चाहती थी। वहीं मल्लिका अब काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और सोचने लगी थी, विक्रांत तो यहाँ किसी एक जरूरी मकसद के लिए आया था, तो फिर वो इतनी आसानी से वापस कैसे जा सकता था। और कहीं ना कहीं विक्रांत के जाने पर मल्लिका को काफी ज्यादा दुख हुआ था, क्योंकि कितने दिनों से उसे विक्रांत की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी, और अब जाकर उसने हिम्मत करके तारा से विक्रांत के बारे में पूछ लिया था, क्योंकि विक्रांत ने उसे वादा किया था कि अगर वो उसका साथ देगी तो वो उसे अमन तक पहुंचाएगा। अब मल्लिका काफी ज्यादा मायूसी हो गई थी। अब उसने अपनी सारी उम्मीदें अक्षत खुराना से ही लगाकर रख ली थी। उसने सोचा था कि शायद विक्रांत डर गया होगा इसीलिए वो भाग गया, लेकिन अक्षत खुराना तो विक्रांत से ज्यादा दमदार लग रहा था, तो इसीलिए मल्लिका ने अपनी काफी सारी उम्मीदें अक्षत खुराना से लगा दी थी। तारा जल्दी से जाकर अपने केबिन में बैठ गई थी, क्योंकि मल्लिका ने जाने अनजाने में विक्रांत का नाम लेकर तारा के डर को हवा दे दी थी, क्योंकि तारा को विक्रांत का नाम लेते ही वो सब याद आ गया था जब वो विक्रांत उसके साथ पिशाचिनियों के जंगल में करने वाला था। इतना ही नहीं, तारा ने जिस वक्त अपने आप को बिल्कुल न्यूड फूलों से भरे हुए बेड पर देखा था, तब उसकी आत्मा तक कांप कर रह गई थी, और किस तरह से उसने सब चीजों को फेस किया था, ये सब याद आते ही तारा का सर चक्कर आने लगा था।
वो सोचने लगी थी कि आखिरकार मल्लिका को विक्रांत से क्या काम हो सकता था, और वो भला विक्रांत का नाम क्यों ले रही थी, कहीं इसने भी विक्रांत के साथ तो ये मिली हुई नहीं थी। लेकिन तारा सोचने लगी थी, विक्रांत तो अब जा चुका है, तो मुझे उस विक्रांत के बारे में ज्यादा ना सोचते हुए विक्रांत के चैप्टर को क्लोज कर देना चाहिए। लेकिन उस राक्षस को लेकर जो उसके मन में डर था, वो कहीं ना कहीं अभी भी मौजूद था, क्योंकि उस राक्षस ने तारा परी की जिंदगी में इतना ज्यादा दुख दिए थे, इतने ज्यादा दुख दिए थे जिसे चाहकर भी तारा परी भूल नहीं पा रही थी। हालांकि अमन के प्यार में और अब जिन्नतों का वंशज जो कि उसके पेट में पल रहा था, उसकी शक्ति के द्वारा उसे काफी ज्यादा ताकत और मजबूती मिली थी, लेकिन उस राक्षा के दिए हुए जख्म तारा के जिस्म पर नहीं बल्कि उसकी रूह पर भी मौजूद थे, तो इतनी आसानी से तारा उसे भूलने नहीं वाली थी। जब तक तारा उसे अपने हाथों से उसके किए की सजा नहीं दे देती या अपनी आंखों के सामने उसे मरते हुए नहीं देख लेती, तब तक तारा की रूह को सुकून नहीं मिलने वाला था, और ना ही तारा की रूह पर लगे जख्म भरने वाले थे। तारा ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए मन ही मन में सोचा था, बहुत जल्द मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा और तेरा नामो निशान मिटा डालेगा राक्षस, बस इंतजार कर मेरा और मेरे बच्चे का। तारा ने इस बारे में अब ज्यादा ना सोचते हुए जल्दी से अपने इंसानी काम करना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी ओर अमित मन ही मन में इतना काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि उसने इस तरह से एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। अमित तारा के केबिन से जाने के बाद अमित ने अमन से कहना शुरू कर दिया था कि वो ऑफिसर्स इतनी आसानी से मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें शबाब और रुपयों का लालच दिया तो वो मिलने के लिए तैयार हो गए। तभी अमन अमित की ओर गुस्से से देखता हुआ बोला था, लेकिन तुम्हें इसके लिए किसी लड़की का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी? अमन शबाब का सीधा सीधा मतलब समझ गया था। तभी अचानक अमित अमन के सामने आ गया था और कहने लगा था, मेरे भाई तू क्यों नाराज होता है? वैसे भी यहाँ पर काफी सारी लड़कियां हैं जो पैसों के लिए ये काम किया करती है, और अगर हम उन्हें थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देकर अपना काम करवा लेते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है? आखिरकार तू प्रैक्टिकल क्यों नहीं हो जाता है? जैसे ही अमित ने इस तरह की बातें करना शुरू किया, अब अमन भी सोच में पड़ गया था और सोचने लगा था कि शायद अमित जो कह रहा था वो ठीक कह रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अमन को इस तरह से लड़कियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, और उसने अमित से कह दिया था, देखो मैं तो अच्छी तरह से जानता हूँ तुम जो कर रहे थे मेरी भलाई के लिए कर रहे थे, लेकिन मुझे लड़कियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, तो तू एक काम कर, उन आदमी को रुपये पैसे दे या जिस तरह से जो भी करना पड़े वो कर, और अपनी फैक्ट्री पर से वो स्टे ऑर्डर हटवा, क्योंकि उससे काफी सारे मजदूरों की जिंदगी जुड़ी हुई है। तभी अमित अमन की ओर देखकर कहने लगा था, मेरे भाई मैं जो कुछ कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, बस इसके लिए तुझे एक रात आज रुकना ही होगा। अमन तारा के बिना एक भी रात नहीं गुजारना चाहता था, लेकिन अब इतने सारे मजदूरों की जिंदगी का सवाल था तो उसने एक रात के लिए अमित से हाँ कह दिया था। तभी अमित मन ही मन में काफी ज्यादा खुश होने लगा था, क्योंकि कहीं न कहीं उसे अपना प्लान पूरा होता हुआ नजर आने लगा था, क्योंकि उन ऑफिसर से मिलने की आड़ में सीधे सीधे तरीके से अमित अमन का मल्लिका के साथ जिस्मानी रिश्ता बनवाना चाहता था, तो इसके लिए उसने पूरे का पूरा सेटअप तैयार कर लिया था। उसे वो किस तरह से करना था
वो भी उसने सोच लिया था। अब उसे सिर्फ और सिर्फ बेसब्री से रात के होने का इंतजार था, क्योंकि कहीं ना कहीं अक्षत की ओर ध्यान आकर्षित करके उसने अक्षत को अमन के सामने इतना बुरा साबित कर दिया था, जिसकी वजह से अमन अब एक इंसान की तरह अक्षत को हराने के पीछे पड़ गया था। अमित ये बात अच्छी तरह से जानता था कि अमन जीतने के लिए कभी भी अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा, वो एक इंसान की तरह ही इंसान की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो अमित ने इसी बात का फायदा उठाया था। उसने अक्षत की तरफ से अमन के दिल में काफी सारा गुस्सा भर दिया था, और वो अच्छी तरह से जानता था कि अमन इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए जरूर अब अपने पैसे पावर का इस्तेमाल करेगा और अपने इंसानी दिमाग का इस्तेमाल करेगा। तो इसीलिए अमित ने अमन को वो रास्ता दिखा दिया था। फिर मन ही मन में अमन सोचने लगा था कि ये इंसानी दुनिया है और यहाँ पर पैसा पावर ही दिखाना होगा, जिसके बदौलत वो उस फैक्ट्री पर से स्टे ऑर्डर हटवा सकता था। तो इसीलिए अमन ने भी हाँ कह दिया था। वहीं दूसरी ओर तारा परी सोचने लगी थी कि अगर अमन आज रात को उन ऑफिसर से मिलने के लिए चल जाएगा तो उसके लिए परीलोक में जाना आसान हो जाएगा, क्योंकि वो परीलोक जाना चाहती थी। परीलोक जाकर वो अपनी माँ की जादुई छड़ी को बचाना चाहती थी। तो कहीं ना कहीं अब दोनों ही अपनी सोच को लेकर सोचने लगे थे, और दोनों को इसी बात की चिंता थी कि वो दोनों एक दूसरे के बगैर रात कैसे गुजारेंगे।